नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसके फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी विशेष प्रस्तुति है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज। पिछले 3 महीनों से ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय से हम हर दिन आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं। समय बदलाव का है, इस बदलते वक्त में हमें भी बदलने की जरूरत है, हम सबने महसूस किया है। और इस बदलाव के दौर में कोशिश हम सब ने की है कि अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाने की, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की। ऐसे में कभी कभार हमें कुछ मदद की जरूरत मिले, कभी मोटिवेशन की जरूरत महसूस हुई है, तो वो देने का काम ब्रह्मा कुमारीज करती रही हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहन हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं। इस बदलाव के सफर में हमारी अगर कोई समस्याएं हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम मार्गदर्शन चाहते हैं, तो वो मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ेंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप उन प्रश्नों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे या फेसबुक पर, जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को टाइप इन कीजिए, और वहां से हम आपके कमेंट्स से उन प्रश्नों को प्रोग्राम के दौरान लाइव फीड में लेंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो आप हमें बताएं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको शाउट आउट देना चाहते हैं तो भी आप सभी हम सबको दे सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में ब्रह्मा कुमारी कुंती दीदी जी जुड़े हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और मुंबई से आज दीदी लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। पिछले अनेकों दशकों में दीदी जी के मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने आध्यात्म के पथ पर इनके मार्गदर्शन में प्रगति की है और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस किया है, एक अकम्पलिश होगी। आज हमारे साथ हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है। मैं दीदी जी का स्वागत करता हूँ। ओम शांति दीदी।
ओम शांति
दीदी। पहले तो आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को, जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को मैं गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए हम कहते हैं कि श्री गणेश करना चाहिए, और अगर हम कुछ परिवर्तन ला रहे हैं तो उसके लिए श्री गणेश करने के लिए इससे अच्छा दिन और कुछ नहीं होगा। और गणेश जी को हम विघ्नहर्ता के रूप में, विघ्न विनाशक के रूप में देखते हैं, तो सारे ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ से हटे, ऐसी मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। दीदी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे भी गणेश चतुर्थी के गुड विशेस लेना चाहूंगा। आप भी हमारे दोस्तों के लिए गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दें।
बहुत ही आज अच्छा दिन है जो हमारे प्यारे भाई बहने आज हमसे जुड़े हैं, क्योंकि गणेशोत्सव जो आज मनाया जाता है, विशेष तौर पर ये महाराष्ट्र से ही आरंभ हुआ और आज देश और विदेश में इसको मनाया जाता है, क्योंकि गणपति को सिद्धि स्वरूप भी कहा गया है, विघ्नहर्ता भी कहा गया है, दुखहर्ता सुखकर्ता भी कहा गया है। तो जहां भी किसी भी शुभ कार्य को पहले करना होता है तो गणपति की मूर्ति भी बनाई जाती है, लेकिन साथ साथ श्री गणेशाय नमः वो लिखा भी जाता है, क्योंकि जिससे हमारी शुरुआत गणेशाय नमः करने से हम उसको पहले नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो जो भी हमारे कार्य होते हैं वो सफल होते हैं। तो मैं भी आज सभी को पहले शुभकामना करती हूँ कि आप सभी भी अपने जीवन के अंदर सदैव सफलता को पाने के लिए हम भी श्री गणेश मन उस गणेश जैसे गुणों को भी धारण करने का एक लक्ष्य भी रखेंगे। ये 10 दिन हम पूजा पाठ आदि तो करेंगे ही, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ उन 10 दिनों में 10 अच्छी बातों को, हर रोज एक बात को अपने जीवन के अंदर आचरण में भी लाएंगे, यह मेरी शुभकामना है। और सभी भक्तों को, भाई बहनों को मेरी आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं समझता हूँ हमारे दोस्त आने वाले 10 दिनों के लिए ये जो प्रयास करेंगे, ये एक अच्छी यात्रा हो सकती है कि आप कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाने की कोशिश कर सकते हैं, आज के दिन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने सवाल पूछने शुरू किए हैं दीदी, वहां से मैं प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूँ। कल भी कुछ दोस्तों ने हमसे प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों को भी, उनमें से भी मैं कुछ प्रश्न बीच बीच में लेता रहूंगा। जिन दोस्तों ने सवाल पूछे हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि आप कौन से प्रोग्राम पर इस चीज को देख सकते हैं, तो मैं उन दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि YouTube पर भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। सुरेश कुमार जी ये पूछ रहे हैं कि आप YouTube पर ब्रह्मा कुमारी का जो ऑफिशियल YouTube चैनल है, youtube.com/ब्रह्मा कुमारी पर आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं, और फेसबुक पर भी facebook.com/ब्रह्मकुमारी इस पर लाइव देख सकते हैं हर दिन शाम को 6 से 7 के बीच में। एक प्रश्न हमारे दोस्त हैं राजलक्ष्मी जी, और ये प्रश्न पूछती हैं, हालांकि ये प्रश्न नहीं है, वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं, सिर्फ उसी चीज को उन्होंने मैसेज किया है हमें फेसबुक से, लाइव जुड़ी हैं। राजलक्ष्मी रविंद्रनाथ नाम है इनका, और ये कहती हैं कि फीलिंग रेस्टलेस। बहुत सारे हमारे दोस्त आजकल ऐसा महसूस कर रहे हैं कि घर पे रह के काम करना पड़ता है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है लाइफ में, तो ऐसे समय पर अंदर से ही बेचैनी जैसा फील करना हो जाता है। तो राजलक्ष्मी जी पूछती हैं कि वो रेस्टलेस फील करती हैं, तो उन्हें प्लीज गाइड कर दे।
बहन राजलक्ष्मी जी, आपने प्रश्न पूछा है वो स्वाभाविक है, क्योंकि आज धीरे धीरे करते हमें लगा कि 1 महीना 2 महीना, लेकिन 5 मास हो गए हैं। तो 5 मास से एक ही स्थान पर बैठ करके कार्य करना वो थोड़ा भारी तो जरूर लगता है, परंतु हम अगर उसको भारीपन से लेंगे तो भारी लगेगा। हम ये सोचें कि कई बातों का इसमें लाभ भी है। हम घर बैठ करके कर रहे हैं तो हमारे कार्य को तो हम कर ही रहे हैं, हम कार्य से अपने आप को दूर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो ट्रैवलिंग में हमें जाना पड़ता था, भीड़ भाड़ में जाना पड़ता था, तो उसे अब हमें जाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन मन के अंदर विचारों की भीड़ आ रही है। तो मन के अंदर भी हम विचारों की भीड़ को न लाएं। बाहर लॉकडाउन जरूर है, लेकिन हमारे मन के अंदर तो लॉकडाउन नहीं है। तो मन को हम अनलॉक रखें, मन से जहां हमारी ऑफिस है वहां पर हम जरूर पहुंचे। हम ये न समझें कि हम घर में बैठ करके कर रहे हैं। हम जब ये सोचते हैं कि घर में बैठ करके 4 दीवारों के अंदर किसी 2 व्यक्तियों के साथ वहीं बैठ करके हमें करना पड़ता है, हम ये न सोचें मन के द्वारा। तो देखो, आप यहाँ बैठे बैठे लंदन अमेरिका के विचार करो तो आप कर सकती हैं। वैसे मन के द्वारा आप अपने ऑफिस में पहुंच जाएं और आप ऐसा महसूस करें कि ऑफिस के सारे सदस्य वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी साथ में बैठ करके कार्य कर रहे हैं। और उस पॉजिटिव रीति से जब आप घर में बैठ करके भी कार्य करेंगे तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं या हमें कंटाला आ रहा है कि बस हो गया अब इतना दिन, ऐसा महसूस नहीं होगा। क्योंकि ये हमारे मन पर है, मन के विचारों को मैं किस प्रकार से ढालूं। बच्चा भी देखो 1 ही घंटा 2 घंटा या 5 घंटा पढ़ाई एक ही स्थान पर बैठ करके करता है। वैसे भी आप देखो रोज ऑफिस में तो एक ही स्थान पर बैठते हैं, एक ही स्थान पर बैठ करके आप लोगों को 7-7 घंटा 8-8 घंटा काम करना पड़ता है। फर्क ये होता है कि वहां 10-12 के बीच में होते हैं या घर के अंदर आप 3-4 सदस्य हैं उनके बीच में है, तो वहां पर भी बात तो वही आती है। लेकिन मैं उसको सकारात्मक रीति से लूं कि मैं मेरे सभी साथियों के साथ बैठी हुई हूँ और वे सभी साथी मुझे साथ दे रहे हैं। मेरी भावनाएं वो अगर मैं श्रेष्ठ रखती हूँ, मेरी भावनाएं समर्थ रखती हूँ, तो वो भावनाएं मुझे कभी भी ऐसा महसूस होने नहीं देंगी। हाँ जी,
बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी कि ये जो हम अपनी भावनाओं को अगर शुद्ध रखते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। और ये होता है कि ऐसा समय चल रहा है जहां पर हम नेचुरली ऐसा फील कर रहे हैं, मगर इसके लिए हमें भी कोपअप करना और हमें भी अपनी तैयारी में कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और कुछ चीजें करने से ये चीजें बदल सकती हैं। हमारे एक और दोस्त हैं डॉली, हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉली जी यूट्यूब से प्रोग्राम को लाइव देख रही हैं। वो कहती हैं कि ये कहा जाता है कि जो आप बोओगे और वही चीज को आपको काटना भी पड़ेगा, जो चीज आप सो करते इसका बीज डालते हो वही चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट भी करता है। तो कहते हैं कि पहले मैं बहुत नेगेटिव सीड्स को मैंने बोया है अपने लाइफ में, तो क्या अब कोई ऐसी चीज है जिससे मैं उस नेगेटिव सीड्स को काट सकूं, या जो नेगेटिविटी से जो ट्री बना है, जो पेड़ उगा है, उसको मैं काट सकती हूं क्या, ऐसे डॉली जी कहती हैं।
डॉली जी, बहुत अच्छी बात है कि जैसा वैसे भी कहा जाता है, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। तो नेगेटिव जीवन के अंदर बो तो डाला है, अब उसको हम चेंज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि समय समय बदलता जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, स्थान बदल जाता है। तो समय परिस्थिति स्थान वो बदल चुके हैं, तो हम इस समय भी हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव बने, सकारात्मक चिंतन करें। तो सकारात्मक चिंतन रोज करते करते वो नेगेटिव जो है वो हमारे अंदर से अपने आप बदल जाएगा। हम ये ना सोचे कि पहले मैं नेगेटिव को बदल डालूं, जैसे एक कचरे की बाल्टी है, लेकिन कचरे की बाल्टी को हमें हाथ लगाने का मन नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं उसे पानी के नल के नीचे रख देते हैं। और जब पानी के नल के नीचे रखते हैं तो बाल्टी भर जाती है, भरते भरते वो कचरा निकल जाता है और अपने आप स्वच्छ बन जाता है। तो पहले तो हमारे बाल्टी के प्रति नेगेटिव भाव था, अरे इतने कचरे वाली थी, बांस वाली, कौन हाथ लगाए, आपने नल के नीचे रख दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद जब वो स्वच्छ हो गई तो आप उसी बाल्टी को उठा रहे हैं, उसी बाल्टी के पानी को यूज भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो नेगेटिव भावनाएं पहले भर गई हैं, मैं अगर सोचती हूँ कि पहले मैं नेगेटिव को निकाल दूं तो वो नेगेटिव निकलेगा नहीं, लेकिन मैं पॉजिटिव करती जाऊं। तो जितना मैं पॉजिटिव अपने मन को बनाती जाऊंगी उतना हम देखते हैं कि नेगेटिव अपने आप हमारे मन से खत्म हो जाता है। जहां देखो जहां अशुद्धता होती है वहां एक अगरबत्ती भी काम कर लेती है। उस अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो वह अशुद्धता दूर हो जाती है, खुशबू आने शुरू हो जाती है। ऐसे मैं एक सकारात्मक अगरबत्ती जलाऊं, वो सकारात्मक अगरबत्ती जलाने से वो नेगेटिव भाव जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी तक जो नेगेटिव करके मेरे कर्म के पीछे कर्म का फल जुड़ा है उसे भी हम चेंज करने के लिए मेडिटेशन को भी अपने जीवन के अंदर अगर स्थान देते हैं तो वो मेडिटेशन भी हमें शक्ति देता है जो नेगेटिव को हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कपड़ों में दाग लग जाता तो आजकल पहले कोई ना कोई केमिकल्स यूज करते, जैसे आजकल आला चल रहा है उसको लगाया और दाग निकाला। तो हमारे मन के अंदर भी नेगेटिव का दाग लग तो चुका है, लेकिन उस दाग को मिटाने के लिए आला जैसा काम जो है वो मेडिटेशन करता है। तो मैं मेडिटेशन को अपने जीवन के अंदर स्थान दूं तो अवश्य ही हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि बहुत बार हम पॉजिटिविटी को अंदर लेके आते हैं तो नेगेटिविटी बाहर जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें दुलाई करने के लिए कुछ और करने की जरूरत है, कि अगर हम अच्छी चीजें अंदर डालते रहेंगे तो जो नेगेटिव चीज है वो अपनी आप धुलती चली जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। कल हमारे एक दोस्त थे जयंत सिंह जो साथ में जुड़े थे, जिनका सवाल हम कल के कार्यक्रम में नहीं ले पाए थे, वो सवाल पूछते हैं। उनका प्रश्न है, वो पूछती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और कैसे मैं उनके इस बुरी आदत को दूर कर सकती हूँ आध्यात्म के द्वारा, प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शंस, ऐसा ये पूछती हैं।
क्या होता है कि वर्तमान समय परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं आर्थिक रीति से कि शारीरिक रीति से पारिवारिक रीति से, अगर मनुष्य न भी चाहे न तो उन बातों को भूल नहीं पाता है तो वो किसी न किसी व्यसन का शिकार बन जाता है। लेकिन हम उनके लिए थोड़ा सोचें कि क्या वो पहले से ऐसे थे, जब बचपन था, जब युवा था तो तब ये संस्कार उनमें नहीं थे, बाद में आए हुए हैं। तो जो बाद में आया हुआ संस्कार है तो उसे हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि वो बाद की चीज है, पहले वाली चीज परमानेंट वाली नहीं है। एक तो हम ये भी समझे और दूसरी बात कि उनको निकालने के लिए आध्यात्मिकता की और डालने के लिए आप सीधा उनको कहोगे कि इस आध्यात्मिकता को अपनाओ तो वो नहीं अपनाएंगे। लेकिन आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए भी उन्हें कोई न कोई लाभ बताने होंगे कि क्यों हमें करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी प्रकार का ड्रिंक्स मन व्यसन है तो व्यसन शारीरिक रीति से भी हानिकारक है। वो अगर आप उनको कहेंगे तो वो कहेंगे कि हमको भी पता है कि शारीरिक रीति से हानिकारक है, शारीरिक रीति से भी हानिकारक है, आर्थिक रीति से भी हानि है, और तीसरी बात कि पारिवारिक में कला कलेश भी बन रहा है। तो हम उनको थोड़ा अपना समय दें, उनके साथ हम प्रेम से व्यवहार करें, अपने संबंधों में क्यों उनको ये आदत पड़ी है उस अगर कारण को जान लेते हैं तो वहां उसके निवारण को हम ढूंढ सकते हैं कि कहीं हमारा उनको पूरा साथ न देना ये उनमें कमी ला रहा है, या जो उनकी इच्छाएं थी उन इच्छाओं को हमने साथ नहीं दिया तो हो रहा है। तो हम उनकी इच्छाओं को भी थोड़ा जानने की कोशिश करें, और हमने अगर समय नहीं दिया है तो हम उन्हें समय देने का भी करें। हमारे संबंधों से हमने उनको दूर किया है, तो थोड़ा संबंधों को जोड़ने का भी हम प्रयत्न करें। तो हम इस प्रकार से अगर हम प्रयत्न करेंगे तो उनकी आदतों को हम परिवर्तन कर सकते हैं।
जी, बहुत ही अच्छी बात है। जब व्यक्ति किसी व्यसन का शिकार बनता है तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो भी कमजोरी है, वो भी व्यक्ति कमजोर है और किसी कारणवश वो इस आदत को उसने लिया है। हम हमेशा क्रिटिकल हो जाते हैं या बहुत बार हम उनको गुनहगार समझने लग जाते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं। शायद ये सही अप्रोच नहीं है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि उनसे बातचीत करके वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो अतृप्ति महसूस करते हैं या सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं करते हैं लाइफ में, वो जानने की कोशिश करना और फिर धीरे धीरे उनको टॉक के जरिए बातचीत करके उन्हें उनसे बाहर निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स भी इसी चीज को एडवाइस करते हैं और प्रोफेशनल हेल्प भी लिया जाता है इस चीज के लिए और ये हेल्पफुल भी होता है। दीदी, एक और प्रश्न है। पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं फेसबुक पे, वो लाइव देख रही हैं प्रोग्राम को। और पूर्णिमा जी पूछती हैं, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ इनर एंड आउटर वर्ल्ड। माई इनर इज ऑलवेज हैप्पी एंड आई वॉन्ट माई आउटर वर्ल्ड टोटली चेंज्ड। आई ट्राई माई बेस्ट फॉर इट, वॉट शुड आई डू, गिव मी सम एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल ओपिनियंस। ऐसा पूर्णिमा जी कहती हैं। वो पूछती हैं कि वो अपने अंदर और बाहर की दुनिया दोनों को बदलना चाहती हैं और वो स्पष्ट हैं कि मैं अपने अंदर की दुनिया को बहुत ही खुश रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी बाहर की दुनिया भी बदले और मैं अपना बेस्ट कोशिश भी करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप कुछ स्पिरिचुअल सोल्यूशन या ओपिनियंस हमें दें, ऐसा पूर्णिमा पूछती हैं।
पूर्णिमा बहन, खुश रहना हर व्यक्ति जानता है, हम नहीं जानते हैं ये भी नहीं, हम जानते हैं कि मुझे कैसे खुश रहना है, क्योंकि मैं नाराज क्यों हुई हूँ। पहले आप कारण ढूंढिए कि मैं क्यों ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। तो कोई ना कोई जो बात मेरे सामने आई होगी उस कारण मैं नाराज हूँ, क्या मेरे साथियों के कारण या किस वजह से, या मेरी अपेक्षाएं अधिक हैं, चाहना अधिक है, तो फिर हम अपने आप को खुश नहीं रख पाते, क्योंकि जहाँ संतुष्टता होती है वहां खुशी होती है। तो कहां ना कहां मेरा मन संतुष्ट नहीं है, तो मैं अपने मन को पहले संतुष्ट बनाऊ, क्योंकि खुशी लानी है तो जहां संतुष्टता होगी वहां जहां प्राप्तियां हैं। अब प्राप्ति मुझे खुशी नहीं दे रही है, तो जहां प्राप्तियां हैं वहां खुशी है, तो मुझे अप्राप्ति कौन सी है? दुख की दुनिया के अंदर अप्राप्ति तो रहेगी रहेगी, लेकिन रोज के दैनिक जीवन के अंदर जो मुझे चाहिए वो सब कुछ अगर मेरे पास है तो मैं दुखी क्यों हूं? या तो किसी के साथ मेरी ईर्ष्या है, या तो किसी के साथ मेरा कंपैरिजन है कि इसके पास ऐसा है तो मुझे भी ऐसा चाहिए, या अपनी कार्य शक्ति के अधिक आप अपेक्षा रखते हैं कि मैं यह भी कर लूं। अभी किसी को 2 किलो वजन उठाने की शक्ति होगी, उसको आप बोलेंगे 10 किलो उठाओ तो नहीं उठा पाएगा। कौन सी ऐसी बात है? वैसे भी आध्यात्मिक रीति से अगर मुझे खुश रहना है तो खुश रहना कौन जाता है? मैं माना कौन? मैं बाहरी रीति से देखती हूँ तो हम खुश नहीं रह सकेंगे, लेकिन मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं प्रकाश पुंज हूँ। जो प्रकाश पुंज स्वतः अपने आप में उसका स्वरूप ही खुश है, उसका आंतरिक स्वरूप भी खुश है। मैं यहाँ पर एक कहानी बताना चाहूंगी कि गुरु जी ने 2 शिष्यों को बुलाया और दोनों शिष्यों के हाथ में एक एक फूलों की टोकरी दिया और वो टोकरी देख करके कहा कि आप ये फूल उसको देना कि जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। दोनों अलग अलग दिशा में गए। थोड़े समय के बाद वे वापिस आए तो एक के फूलों की टोकरी वैसी की वैसी थी, एक भी फूल कम नहीं, और एक के फूलों की टोकरी खाली थी। तो गुरु जी ने पहले जिससे फूलों की टोकरी भरी हुई थी उसे पूछा कि क्या हुआ तुम ऐसे ही लौट करके आए? तो कहा गुरु जी, आज कलयुग की दुनिया के अंदर जहाँ चारों ही और दुख अशांति फैला हुआ है, जहाँ आज मानव तनाव में चल रहा है, जहाँ आज समस्याएं परिस्थितियां एक चरम सीमा तक पहुंची हुई हैं, वो खुश कैसे रह सकते हैं? इससे मैंने किसी को भी फूल नहीं दिया। दूसरे को बोला कि तुमने कैसे सारे फूल खत्म किए? तो उसने कहा गुरु जी, दुनिया तो यही है और यही रहेगी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं मुस्कुराऊंगा तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा, फिर इससे पहले मैंने मुस्कुराया तो मैंने मुस्कुराया तो सामने वाला भी मुस्कुराया, मैंने उसको फूल दिया, फिर दूसरे के साथ भी मैं मुस्कुराया, तीसरे के साथ भी, ऐसे करते करते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। मैं मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था, तो मेरे साथ सब खुश हो रहे थे और ही मेरे फूल कम पड़ गए। तो बहन हम ये जाने कि खुशी कहीं और बाहर नहीं है, खुशी हमारे अंदर के जीवन में है। हमें आंतरिक झांक करके देखना है। हम सब बाहर की बातों को देखते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन मैं अंदर को अगर देखूं और अंदर के अंदर जितना हम गहरा जा सके अपने अंदर, जैसे एक एक्सरे मशीन होती है ना, तो एक्सरे मशीन हमारे भीतर की बातों को बताती है। फोटो आपका सब बाहर तक खींच सकता है, लेकिन एक्सरे मशीन आपके अंदर की बात को बताती है। तो हम भी मन के द्वारा अपने भीतर का एक्सरे करें, तो वो एक्सरे करने से मुझे पता चलेगा कि मेरी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप जो है वो सुख है, वो शांति है, वो खुशी है, वो आनंद है। तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के अंदर उस खुशी को, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि ये अगर हम देना शुरू करते हैं, अगर हम किसी को स्माइल देते हैं तो सामने वाला भी हमें वापस देता है। खुशियां बांटने का यही सही तरीका भी है कि अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो फिर हम बहुत कुछ अच्छा देख भी सकते हैं। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, विकास नाम है इनका, और विकास जी मेडिटेशन से जुड़ा हुआ ही प्रश्न पूछते हैं। विकास सिंह जी पूछते हैं कि ड्यूटी टाइमिंग कभी शाम कभी रात कभी दिन ऐसे चेंज होने से मेडिटेशन नियमित नहीं हो पाता है, परेशान हूं, हल बताइए दीदी, ऐसा ये विकास पूछते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो सिर्फ शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करते हैं, तो समय शिफ्ट का काम करने का भी टाइम टेबल अलग अलग होता है, जिससे कभी देर रात तक काम करते हैं, कभी कभी रात भर काम करना पड़ता है। तो ऐसे में जब चेंजेस होते हैं तो मेडिटेशन के लिए रेगुलर कैसे करें हम, इसके लिए ये सवाल पूछते हैं। विकास नाम है इनका।
हाँ जी विकास भाई, आजकल जैसे भाई ने भी बताया और आप भी जानते हैं और आप खुद ही सर्विस भी इसी प्रकार की है, आपकी शिफ्ट बदलती रहती है। ये शिफ्ट बदलना अब ये तो नियम बन गया है, लेकिन जब शिफ्ट बदलने का नियम है तो हमारी नींद को हम क्या करते हैं, नींद को हम एडजस्ट करते हैं, हम कर लेते हैं, भोजन को हम एडजस्ट करते हैं, कर लेते हैं, और दैनिक कार्यों को हम एडजस्ट करते हैं, कर लेते हैं। उसके अनुसार शिफ्ट चेंज हुई तो मैं उन कार्यों को तो बराबर एडजस्ट कर रही हूँ ना, उसमें तो मेरा मैं अंतर नहीं ला रही हूँ, तो मेडिटेशन में भी मैं अंतर क्यों ला, वहां पर भी मैं ये सोचूं कि जैसी शिफ्ट है उस अनुसार से मुझे मन को प्रोग्राम देना है। अगर रात को मेरी 11 बजे से ड्यूटी शुरू होती है सुबह 5 बजे तक, तो कोई बात नहीं है, 5 के बाद थोड़ा समय मैं मेडिटेशन करके फिर आराम करूं, ये भी संभव है। और अगर हमें लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो, उसके बाद नियम बनाओ कि मुझे आधा घंटा भी जरूर करना है। भोजन के लिए भी मैं 15 मिनट तक एडजस्ट कर ही रही हूं, उसमें तो मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूं, भले रात दोपहर को 1 बजे भी अगर काम पर से आई तो भी मैं खाना खाऊंगी, 5 बजे आई तो भी खाना खाऊंगी, क्योंकि शरीर को चाहिए। तो मुझे ये पता है कि मेरे शरीर को ये आवश्यक है तो मैं उसको एडजस्ट कर रही हूं। तो मेरी आत्मा के लिए भी मेडिटेशन वो बहुत ही आवश्यक है। अगर मन कमजोर हो जाएगा तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं उसको रूटीन के अंदर कोई ना कोई समय, अभी समय आपके हाथ में है, उस समय में ये जरूर सोचूं कि मुझे आधा घंटा भी जरूर मेडिटेशन करना है। हम दिनचर्या में अगर टाइम टेबल में हम उसे सेट करेंगे तो वो सेट हो सकता है।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि हम रेगुलर चीजों के लिए टाइम निकालते ही हैं, तो मेडिटेशन को भी ऐसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाना जरूरी है। और जब हम ऐसा चीज करते हैं तो फिर तो आसानी से हो भी जाता है कि आप सोने से पहले करें, भोजन के टाइम पे करें, सुबह जब भी उठें रेस्ट करके तब करें। तो मेडिटेशन में आपको बाइंड नहीं करता कि आपको इसी समय करना चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब ऐसी है तो उसके हिसाब से आपको मेडिटेशन को भी फ्लेक्सिबली अपने टाइम टेबल का हिस्सा बना लेना चाहिए। विकास जी, मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हमारे एक और साथी हैं, मनीषा नाम है इनका, और मनीषा जी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं दीदी, और वो प्रश्न पूछती हैं कि समटाइम्स यू फेस डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड लाइक नो हैप्पीनेस नो सैडनेस ओनली साइलेंस इन द माइंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज दिस, ऐसा पूछती हैं। मनीषा जी कहती हैं कि कुछ समय मन आपके अलग अलग स्थितियों में गुजरता है, कभी कभार आपके मन में कोई खुशी नहीं होती ना ही कोई सैडनेस होता है, ऐसे ही आप ब्लैंक या साइलेंस जैसा महसूस करते हैं, और मैं इस चीज को समझ नहीं पा रही हूँ, ये क्या है, कैसे इस चीज को डील करना चाहिए, ऐसा मनीषा पूछती है।
मनीषा बेन, क्योंकि संसार की बाहरी बातों को आप देखेंगे ना तो आप अपने मन को सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाहरी बातें हमें सेट करने नहीं देती हैं। कभी कभी आप ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली फ्री बैठे हैं, लेकिन क्या करूं वो भी सूझता नहीं है। लेकिन नहीं, जब एक आध्यात्मिकता को अपने जीवन के अंदर हम स्थान देते हैं, कभी कभी आप खुश हैं, माना कोई बाहरी चीजें आपको मिली तो आप खुश हैं। तो यहाँ पर मैंने आध्यात्मिकता को, या ये कहें कि स्पिरिचुअलिटी या जिसे कहें मेडिटेशन, उसको अगर हम स्थान देते हैं तो हमारे लिए कोई भी ऐसा समय नहीं आता है कि हम कभी उदास हो जाएं या निराश हो जाएं या फ्री बैठे रहें कि मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होता है कि जब हमने हमारे जीवन के अंदर किसी और बात को स्थान, क्योंकि ये काम ये काम ये काम ये काम, बस यही हमने मन को बांध के रखा है, तो हम उस बंधन से थोड़ा बाहर बने, कुछ हम और भी आगे कदम बनाए, परमात्मा के साथ भी हम नाता जोड़ के देखें। जैसे यहाँ सृष्टि पर हर एक के साथ हमने नाते जोड़ के देखे हैं, तो उतने दायरे तक जब मेरा हो जाता है तो फिर मैं सोचती कि मैं फ्री हो गई, अब मैं क्या करूं, तो मेरी खुशी भी दूर हो जाती है, सब कुछ दूर हो जाता, और फिर निराशा स्थान ले लेती है। लेकिन हर रोज आप अपने जीवन के अंदर सुबह को उठ करके एक आशा की किरण जागृत करें, जैसे सूर्य निकलता है एक नई आशा की किरण को लेकर के आता है, तो आप भी सोचो कि मैं भी आज सुबह उठी हूँ, परमात्मा को मैं साथ रखूं, जिसकी मैं वंदना करती हूँ, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जिसकी मैं अर्चना करती हूँ, उसको साथ रखो, उसको साथ रख करके मन के अंदर एक नई आशा को, नए उमंग को, नए उत्साह को साथ रखो कि आज मुझे सारे दिन के अंदर खुद भी नए उमंग और उत्साह में रहना है और मुझे दूसरों को भी रखना है, तो मुझे दूसरों को खुश रखना है, दूसरों को उमंग में लाना है, तो स्वाभाविक है कि मैं उमंग और उत्साह में रहूंगी ही, तो मैं कभी निराश हताश वो नहीं हो सकती हूँ।
मनीषा जी को मैं समझता हूँ उनके प्रश्न का उत्तर मिला है ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे एक और दोस्त हैं, नाम है इनका मिताली, और मिताली जी प्रश्न पूछती हैं कि मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्त लॉकडाउन के दौरान नए से मेडिटेशन वगैरह सीख रहे हैं, और कुछ लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी किए हैं राजयोगा के, तो ऐसे कुछ दोस्त भी सवाल पूछते हैं। तो मिताली जी पूछती हैं कि हाउ टू रिमेन सोल कॉन्शियस ऑलवेज प्लीज गाइड, ऐसा पूछती हैं। साथ में इसी से मिलता जुलता प्रश्न एक और दोस्त पूछती हैं, नाम है इनका रूपसी। रूपसी जी पूछती हैं कि क्या हम ऐसा प्रैक्टिस करें जिससे सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल हो जाए, और पूरी दिनचर्या में ऐसे क्या किया जाए जिससे हम सोल कॉन्शियस नेचुरली हो सकें, उसके बारे में प्लीज बताएं, ऐसे रूपसी जी पूछते हैं। तो मिताली जी और रूपसी जी दोनों सोल कॉन्शियसनेस के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि हम सोल कॉन्शियसनेस कैसे रह सकते हैं हमेशा।
दोनों बहनों का अच्छा है, क्योंकि अभी तक हम जो रहे हैं वो बॉडी कॉन्शियस रहे हैं, इस देह के वश, इस शरीर के भान में हम सभी रहे हैं, तो मुझे परिचय ही बाहर का है, तो बाहर का परिचय होने के कारण हम उसमें रहे हैं। अभी अभी आपने अगर ऑनलाइन हमारा कोर्स किया हुआ है, जैसे भाई बता रहे थे, तो आप लोगों ने अभी अभी ऑनलाइन कोर्स किया है, तो उस कोर्स के पहले दिन आपको बताया गया होगा कि आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, आप शांत स्वरूप है, आप मन के द्वारा विचार करने वाले, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने वाले, और जो कार्य बार बार करते वो आपके संस्कार बनते हैं, ये आपको परिचय दिया गया है। तो आपने सिर्फ उस कोर्स को सुना है, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ करके आता है, पढ़ने के बाद वो किताबें बंद करके बैठ जाए, उसका अभ्यास ना करे, तो उसके मन के अंदर वो विद्या अंदर जाएगी नहीं। तो हमने भी ऑनलाइन कोर्स करना है, इसलिए हमने कोर्स कर लिया है। अब बुरा नहीं मानना बहन मेरी, तो हमने कोर्स कर लिया है, लेकिन उस कोर्स के बारे में मैंने चिंतन नहीं किया है। तो कोर्स सुनना भी होता है और कोर्स का चिंतन भी करना होता है। तो जितना हम चिंतन करते हैं, तो उतना हम, जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया, तो उसको रहता, उसे कॉन्शियस ना था कि मैं डॉक्टर हूँ, पहले उसे कॉन्शियस नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वैसी पढ़ाई पढ़ने लगा तो उसे बार बार ये आता था कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। उसे किसी ने कहा थोड़ी, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करने के बाद जब बन गया, तो उसने अपने आप को कहा कि मैं डॉक्टर बन गया। ऐसे ही उसने वो अभ्यास किया। मैंने अपने जीवन के अंदर ये अभ्यास कितना किया, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करने वाली हूँ। ये कर्म इंद्रियों को जैसे मैं चाहूं वैसे आदेश दूं, वो मेरा मानने वाले हैं। तो मैं खुद कौन? तो मैं वशुद्ध आत्मा, मैं बिंदी स्वरूप आत्मा, जो आत्मा इस शरीर को चला रही है। जैसे एक माँ बाप घर को चला रहे हैं, ऐसे मैं भी, यह भी घर है, यह भी एक परिवार है, इसको भी मैं आत्मा चला रही। तो इसका जब हम को अभ्यास करते रहेंगे, दिन में कम से कम 5 बार भी अगर मैंने ये अभ्यास किया, तो धीरे धीरे करके मेरा अभ्यास बढ़ता जाएगा और मैं सोल कॉन्शियस बन सकती हूँ। बहुत इजी तरीका हमारे लिए ये है कि हम उसका बार बार अभ्यास करें। देखो चटनी, एक बार माता पूछ रही है, बहने पूछ रही है, तो प्रैक्टिकल बता रहे कि आप लोग चटनी पीसती हैं, तो एक बार चटनी पहले पत्थर पर होता था, आजकल मिक्सर है, मिक्सर में भी खाली एक ही चक्कर घुमाने से चटनी नहीं पीसी जाती है, वो भी अंदर कितनी बार गोल घूम रहा है, तो गोल घूमते घूमते वो जाकर के चटनी पीसता है। ऐसे भी मेरे अंदर भी बार बार जब मैं कहूंगी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, जब इस प्रकार का अभ्यास मैं भी बार बार करूंगी, तो स्वाभाविक है कि मेरे मन के अंदर वो पाठ पक्का हो जाएगा और मैं सोल कॉन्शियस बन जाऊंगी।
बहुत ही सुंदर उत्तर दिया दीदी, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अपने अंदर वो चिंतन लाना जरूरी है, कि जितना हम खुद उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तब ये चीज हो सकती है। दोस्तों हम लगभग आधे घंटे तक आ चुके हैं, तो अगर आप में से कुछ लोगों ने देरी से लॉग इन किया है, तो उन सभी दोस्तों के लिए मैं बता दूं कि प्रोग्राम लाइव है, तो प्रोग्राम के लिए आप सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए, अगर आप सवाल नहीं पूछना चाहते तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ शाउट आउट देना चाहें तो वो भी हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाएंगे। और कल संडे है, तो संडे होने के नाते कल बी द चेंज सीरीज का ये प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर कल इंग्लिश में होगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, या फिर हिंदी जिनकी पहली भाषा नहीं है, तो ऐसे दोस्तों को आप कल प्रोग्राम के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कल हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन भी इंग्लिश में ही प्रश्नों का उत्तर देंगे। दीदी एक और हमारे दोस्त हैं, अजय नाम है इनका, और अजय जी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं, और वो कहते हैं अपनों ने ही प्रॉपर्टी में धोखा दे दिया है तो कैसे संभाले खुद को, ऐसा ही पूछते हैं कि ऐसा होता है बहुत बार कि प्रॉपर्टी के इश्यूज में कभी हमारे परिवार वाले या अपने मित्रों से ही या अपने कोलीग से ही धोखा हो जाता है, तो ऐसे में हम खुद को कैसे संभालें, ये प्रश्न पूछते हैं अजय।
अजय भाई, प्रॉपर्टी के जो होते हैं केस, वो बाहर वालों से तो होंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी माना हमारे अपने परिवार के अंदर ही होती है, तो अपने परिवार वाले ही तो हमको धोखा देंगे ना, भाई होगा या चाचा होगा, माँ, ये करीब वाले ही वो हमें धोखा देंगे। तो हम समझते हैं कि हम उनके साथ अच्छी तरह चले, हमने इस प्रकार से ऐसा व्यवहार किया था, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बात आपकी राइट है, परंतु हम उनके साथ अच्छे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, मुझे भी याद आता है कोई बातें, अब मैं भी नाम और ये तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन ऐसी घटना प्रैक्टिकल घटी हुई मैं आपको बता रही हूँ कि जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तो आपस में तीन भाई थे, लेकिन तीनों भाई में एक भाई वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब कुछ भी पढ़े, स्कूल में गए भेजा ही नहीं था भाइयों ने, क्योंकि उनके माता पिता ने बचपन में ही शहर छोड़ दिया। तो उसके बाद ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हुआ उस समय की घटनाएं हैं, तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ आने के बाद वो भोले थे, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं थे, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि कार्य वो सब कुछ कर रहे थे और उनके ही नाम के आधार से लोगों के साथ पहचान भी बने, और वो पहचान बनाने के बाद जो भी कार्य करने वो वही बाहर कर रहे हैं, लेकिन परिवार वालों ने उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। तो वहां पर हमें ये समझना होता है, आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि या तो मैंने पिछले जन्मों में, इस जन्म में मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके पिछले जन्मों में, पूर्व जन्मों में हो सकता है कि मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया होगा, कहां न कहां मैंने उनको धोखा दिया होगा, तो कर्म तो उसके पीछे फल जुड़ जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसके साथ वो हमारा फल जुड़ जाता है, जिसको कहते हैं ना कि अभी जो हम कर्म करते जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, लेकिन लास्ट में चित्रगुप्त उसे बताता है कि तुम्हारे ये कर्म का ये फल है। तो चित्रगुप्त क्या है? कोई चित्रगुप्त एक व्यक्ति या कोई ऐसा नहीं है, चित्र माना आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के साथ जो फल बन रहा है वो गुप्त रीति से जो हमें दिखाई नहीं देता है वो चित्रगुप्त है। तो वो बनता गया, वो चित्र हमारा गुप्त रीति से जमा होता गया, वो उस जन्म में नहीं पूरा हुआ तो दूसरे जन्म में हमारे साथ वही कर्म सामने आता है। तो हम ये सोचें कि जहां हम देखते हैं कि हमें धोखा मिला है और हम कुछ करना चाहते भी हैं तो भी हम नहीं कर पाते हैं, तो हम इसमें भी ये सोचें कि कोई ना कोई जन्म में मैंने इनके साथ ऐसा किया है, उसके कर्म का फल मुझे इस समय मिल रहा है, तो हम उसे माफ कर दें। वैसे भी आज जैन धर्म के रीति से भिक्षामि दुक्करम बहुत अच्छा शब्द कहते हैं कि सारे वर्ष के अंदर जाने अनजाने मेरे से कोई भी भूल हुई हो तो आप क्षमा करें। तो आप अपने मन के अंदर आपको धोखा वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको सामने ना कहें, लेकिन परमात्मा के पास जिस इष्ट देव को आप मान रहे हैं उनके पास जाकर के मन से अपने दिल से क्षमा मांग लें कि मेरी इस जन्म में नहीं कोई पहले के जन्म में भी अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो परमात्मा अवश्य क्षमा करेगा। और उन आत्माओं को भी सामने रख करके मन के अंदर, बाहर हम नहीं करें भले, अंदर उनसे भी हम क्षमा मांगे तो क्षमा मांगने से हो सकता है कि उनके मन के अंदर भी भाव बदल जाए। अभी जो धोखा देने का भाव है वो क्षमा हमारी भावना उस व्यक्ति के अंदर जाएगी और उसकी भावना बदल जाएगी और हमारा जो हिस्सा है या प्रॉपर्टी में मेरा जो हक बनता है वो मिल सकता है आंतरिक रीति से क्षमा मांगने से।
जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि बहुत बार हम सामने वाले को माफ नहीं करते हैं और सामने वाला माफी हमसे मांगे ये भी उम्मीद रख के चलते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला माफी मांगे तब हम माफी दें। अगर हम खुद ब खुद माफी देना सीखें तो हमारे लिए हमारी तरफ से हम उस चीज को ठीक कर देते हैं। और आज जो आपने ये उदाहरण दिया कि ये लोग जो कहते हैं कि मिच्छामि दुक्करम कहा जाता है वो इसीलिए है कि हम अपने रिजेंटमेंट को, अपने बिल्डअप की हुई नेगेटिविटीज को हम रिजॉल्व कर सकें, इसलिए और ये कोशिशें हमें करनी चाहिए। एक और दोस्त है हमारे साथ, पूजा नाम है इनका, और पूजा जी मेडिटेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछती हैं। वो पूछती हैं कि व्हेन डूइंग मेडिटेशन व्हाट शुड आई आस्क गॉड टू ब्लेस मी विद व्हिच विल हेल्प मी एंड माय फैमिली एंड किड्स। जी पूजा जी पूछती हैं,
आवाज क्लियर नहीं आया
जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दीदी। पूजा पूछती हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें परमात्मा से क्या पूछना चाहिए, क्या ब्लेसिंग मांगना चाहिए जिससे मेरे फैमिली को और मुझे और मेरे बच्चों को मदद मिल सके, तो क्या ब्लेस करें भगवान हमें और हम क्या कहें मेडिटेशन में उनसे, ऐसा पूजा पूछती हैं।
वास्तव में देखा जाए तो आशीर्वाद या दुआ जिसे कहें, ब्लेसिंग जिसे कहें, वो मांगा नहीं जाता है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, हम उनके संबंधों में आ रहे हैं, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम ईमानदारी के साथ उनके साथ चल रहे हैं, तो उनकी सदैव हमारे पर ब्लेसिंग होती ही होती है। तो मैं भगवान से, परमात्मा से मांगू नहीं, मांगना अगर दूसरे शब्दों में कहें, आप बुरा नहीं मानना यहाँ पर, कि मांगता वो है जिसे हम गरीब होते ना, साधारण होते हैं, वो मांगते हैं। और जो अधिकारी, जैसे घर में बच्चा है तो बाप से अधिकार के ऋषि से कहेगा कि पापा मुझे ये चाहिए, वो मांगेगा नहीं। और बाप पहले ही समझता है कि बच्चे को ये आवश्यकता है, तो उसके मांगने से पहले वो बाप दे भी देता है। ऐसे ही मैं अगर परमात्मा की आज्ञाकारी बच्ची हूँ, मैं परमात्मा के साथ इतनी ईमानदारी के साथ चल रही हूँ, मैं सत्यता के साथ चल रही हूँ, तो परमात्मा की नजर मेरे ऊपर है ही है, उनकी अमी दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि वो मेरे पर है ही है और वो मुझे देगा ही। अब फिर भी अगर हमें लगता है कि मुझे मांगना ही है, तो हम मांगे तो ये मांगे कि हर एक को परमात्मा सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे। इस अच्छी बुद्धि से हम अपने जीवन के अंदर नेक कर्मों को कर सके, अच्छे कर्मों को कर सके। इस अच्छे कर्मों को कर करके एक आदर्श नागरिक बन सके, जो परिवार को, समाज को और देश को जिससे लाभ हो, ऐसा मैं आदर्श नागरिक बनूं, ऐसी अच्छी बुद्धि परमात्मा मुझे दे, परिवार को भी ऐसी अच्छी बुद्धि दे। अब वो मांगे
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बड़ा ही सुंदर उत्तर आपने दिया कि परमात्मा से हम दुआएं मांगे, ये नहीं कि हम मांगना भी नहीं चाहिए और वो चीज बिना मांगे ही मिलती है अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, तो ये चीज आपने बताई। एक और प्रश्न हमारे साथ हमारे दोस्त पूछते हैं, भैरू सिंह राठौड़ नाम है इनका। भैरू जी पूछते हैं कि क्या जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, तो किस प्रकार सही गुरु को चुने। ये दो प्रश्न पूछते हैं कि क्या जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, अगर हाँ तो किस प्रकार का सही गुरु चुने, किस प्रकार से सही गुरु को चुने, ऐसा भैरू सिंह पूछते हैं।
भैरू सिंह भाई, आध्यात्मिकता अपने आप में गुरु है, किसी व्यक्ति विशेष को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो गुरु बना तो माना एक व्यक्ति बनेगा, एक मनुष्य बनेगा, लेकिन आध्यात्मिकता वो अपने आप में गुरु है। और आध्यात्मिकता को सिखलाने वाला वो स्वयं परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, जो सर्व गुरुओं का भी गुरु है, है? गुरुओं का गुरु परमात्मा को कहा गया। आप जितने भी गुरुओं को देखेंगे तो सभी गुरु लोग उस परमात्मा को नमन करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ गुरु नहीं, सत गुरु मैं कहूंगी, वो अगर है, अगर मुझे चुनना है तो मैं उस सत गुरु को चुनू, परम सत गुरु को, जिसे परम पिता भी कहते हैं, परम शिक्षक भी कहते हैं, परम सतगुरु भी कहते हैं। हम उसे चुन लेते हैं तो उसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान, जो मेरा गुरु है, जो मेरी जीवन को बनाती है, जो मेरे चरित्र को श्रेष्ठ बना, वो सबसे बड़ा गुरु वो तो है परमात्मा परमेश्वर।
बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी, और ये जो आपने बात कही, मैं समझता हूँ सभी लोगों को रेजोनेट करता है। और मैं ग्रंथ साहब में से एक चीज यही कहूंगा कि गुरु नानक जी ने भी यही बात कही कि ईश्वर जो है वही वाहे गुरु है, उसके जैसा गुरु कोई और नहीं हो सकता, और ईश्वर को गुरु चुनना उससे बेहतर और कोई मिल नहीं सकता। भैरव जी आपको मैं समझता हूँ प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धर्म नारायण दुबे जी हैं हमारे साथ, ये फेसबुक से जुड़े हैं और ये प्रश्न पूछते हैं। गणेश चतुर्थी की सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं, और वो कहते हैं मैं कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूं और ये पेशे से एक वकील हैं, और ये कहते हैं कि मैं अपने व्यवसाय में सबके मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और मदद करता हूं, लेकिन मुझे उसका प्रतिफल उन लोगों द्वारा नहीं मिलता, लेकिन बाबा की कृपा से मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह समझ में नहीं आता कि मेरे द्वारा व्यवसाय में किए गए कर्मों का फल कब मिलेगा। दीदी आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, ऐसा कहते हैं धर्म नारायण जी।
भाई जी आपका प्रश्न अच्छा है कि कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, सभी के साथ भी अच्छा है, लेकिन जैसा फल चाहिए वैसा नहीं मिलता है। गीता के अंदर भगवान वाच्य है, भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन तू कर्म करता चल तो फल की इच्छा को मत रख, कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलना निश्चित है, क्योंकि आज मुझे उस फल की आवश्यकता लग रहा है कि मुझे चाहिए, परंतु ये मेरी इच्छा है कि मुझे चाहिए, परंतु उसकी आवश्यकता अभी नहीं होगी। ये फल उस समय पर जाकर के हमें मिलता है जिस समय हमारी परिस्थिति ऐसी कोई होगी, उस समय वो मेरा पुण्य फल आकर के खड़ा हो जाएगा। मैं एक मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण मेरा भी बताना चाहती हूँ कि हमने भी बचपन के अंदर इसी प्रकार से, जैसे आप वकील होकर के किए, हमने एक सेवा भाव की रीति से कई आत्माओं की न सिर्फ आध्यात्मिक रीति से हमने सेवा की, लेकिन जब जब कोई बीमार हुए उनके साथ हॉस्पिटलों में जाकर के भी हमने सेवाएं की। जिस रीति से कोई साधारण थे उनके साथ वैसी सेवाएं भी उनको दी, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको पढ़ना लिखना भी सिखाने की सेवा की, हर एक प्रकार की फील्ड में सेवाएं की। अधिकतर हॉस्पिटलों में पेशेंटों के साथ रुक करके, जहां सभी को बांस आती है रहना नहीं पसंद करते हैं, ऐसे स्थान पर भी हमने रहना चाहा और हमने सेवा की। उस समय तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर हमें लगा कि इतनी सेवाएं करने के, क्योंकि छोटे थे और सेवाएं करते थे तो होता है कि फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कोई क्यों मुझे इस प्रकार से नहीं प्रोत्साहित करता है, और ही मेरे सामने नेगेटिव क्यों आता है, तो होता था, मुझे भी होता था। लेकिन जिस घड़ी मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझना आरंभ किया, सुनती तो बचपन से थी, 12 वर्ष की आयु से मैं ज्ञान सुन रही थी, परंतु एक समझ का समय आता है, तो जब वो समझ आई मेरे अंदर तो मैंने उसको समझा, तो वो समझ में आता गया तो मेरे मन के अंदर मैंने लक्ष्य बदल डाला कि मैं गलत सोच रही हूँ। लेकिन आज जब भी मेरे पास कोई भी बीमारी आती है या कोई भी ऐसी समस्या आती है तो मैं समझती हूँ कि शायद अभी इसका रास्ता कुछ भी नहीं है, अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मोड़ पर आते हैं तो उस समय पर मैं देखती हूँ कि रास्ता कहाँ से आ जाता है, मुझे खुद को भी नहीं पता चलता। तो जिस समय मुझे आवश्यकता नहीं थी उस समय वो फल मेरा बैंक में, जैसे हम FD है, हमने FD करके रख दिया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझती कि मेरा पैसा होते भी मेरे काम नहीं आ रहा है, FD में पड़ा है, बैंक में पड़ा है। हम ये सोच रहे कि हमारे माँ बाप ने FD बना के क्यों रखी है, वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, हम भी तो यूज कर सकते हैं ना, लेकिन उन्होंने क्यों बना के रखी है। लेकिन उन्होंने इसलिए बनाई है कि मुसीबत के समय पर वो आपको काम आएगी। तो ऐसे हमारे जो पुण्य कर्म है, हमारी जो इस प्रकार की सेवाएं हैं, वो मेरा एक पुण्य कर्म है, एक पूंजी है, पुण्य की पूंजी से बढ़कर के कोई पूंजी नहीं होती है। वो पूंजी मुझे उस समय काम आती है कि जिस समय मेरी परिस्थिति विकट होती है, जिस समय मुझे लगता है कि शायद भगवान भी अब मुझे मदद नहीं कर रहा है, हमारा मन जब ऐसा हो जाता है ऐसे समय पर वो फल आकर के सामने खड़ा हो जाता है। मैंने आपको इसलिए कहा कि मैं प्रैक्टिकल मेरा बताती हूँ, अभी 1.5 मास पहले भी थोड़ी तबियत इस प्रकार से हमारी हुई, लेकिन सभी ने मुझे, भाई बहनों ने भी कहा कि आप इतनी जल्दी खड़े कैसे हो गए। तब मैंने कहा कि मैंने जो पहले कर्म किए हुए हैं उस समय मुझे प्रोत्साहित किसी ने नहीं किया था, मुझे लग रहा था कि फल नहीं मिल रहा है, लेकिन ये फल मुझे इस समय पर आके खड़ा हुआ, जिसने मुझे 2 दिन के अंदर खड़ा कर दिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी परंतु उसने 2 दिन में खड़ा किया, क्योंकि वो फल मेरा सिंचित कर्म, वो सिंचित कर्म हो गया, सिंचित कर्म का फल उस समय के बाद, जैसे राजा दशरथ की, बोलू ना मैं, समय है ना भाई,
जी जी
राजा दशरथ पहले राजकुमार थे, तो राजकुमार थे उन दिनों उनसे गलती हुई थी कि श्रवण कुमार की मृत्यु पे उनके माता पिता ने उस समय श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वीरा में होगी, तब लोग राजकुमार थे। उसके बाद उनका विवाह हुआ, उनके बाद बच्चा हुआ, वो स्वयंवर के लायक बना। मना सोचो कितने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीतने के बाद उसका फल जब राम राजा बनने के समय पर आया उस समय आकर के मिला, वो हमारा सिंचित कर्म होता है। तो भाई जी आप ऐसा न सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या होगा फायदा, लेकिन ये हमारा सिंचित कर्म है, वो सिंचित कर्म मुझे फल अवश्य देगा जब उस समय आएगा, जिस समय मुझे FD की जरूरत पड़ेगी तब मैं तोड़ूंगी ना
जी।
ऐसे पहले मैं FD को तोड़ करके मेरे पैसे खत्म कर डालूंगी, जनरल बातों में हम यूज कर डालेंगे, तो जब मुसीबत का समय हो और मैं उसको निकालूं तो मुझे उसकी वैल्यू भी होगी, तो ये भी कर्म का फल उस समय मेरे सामने आएगा तब मुझे उसकी वैल्यू होगी। मैं इस बात को समझूं तो मुझे कभी भी मन के अंदर ऐसा नहीं आएगा कि ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रतिफल का प्रतिफल मिल रहा है, आपके चेहरे पर खुशी आ रही है, आपके मन के अंदर सेटिस्फेक्शन है, ये भी तो प्रतिफल है। आप अंदर सोच रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अच्छा काम किया, तो ये भी तो आपका प्रतिफल है, इससे बढ़कर के तो कोई प्रतिफल होता ही नहीं है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि बहुत बार हम देखते हैं कि कब मिलेगा, क्या मिलेगा इसके बदले में, बट ये जो आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं कुछ चीजें और इमरजेंसीज में ये चीज हमारी मदद करती है, और ऐसे न जाने कितने बार होता है कि मुश्किल की घड़ियों में हम मक्खन में बाल जैसे निकल जाता है वैसे आसानी से परिस्थितियों से निकल आते हैं। ये सब कुछ हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। अगले प्रश्न पर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं समझता हूं हमारे पास लगभग 10 मिनट जितना समय है, इतने में मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल लेना चाहता हूं। हमारे साथ एक प्रश्न आया है, वो पूछती हैं कि माय क्वेश्चन इज आई हैव अ ग्रैंडसन हु इज 8 years ओल्ड बट हिज पेरेंट्स आर ऑलवेज शाउटिंग एंड टेलिंग हिम ऑफ। आई ट्राई टू कंसोल हिम एज आई एम अ BK बट दे टेल मी ऑफ, प्लीज एडवाइस। मेरे ख्याल में एक सीनियर सिटीजन है और ये कहते हैं कि इनको एक पोता है जो 8 साल का है और इस इनके माता पिता हमेशा इस बच्चे पर चिल्लाते रहते हैं और उसे अपनी बात कहने नहीं देते, और ये कहते हैं कि ये ग्रैंड पेरेंट होते हुए कि उस बच्चे को कंसोल करने की कोशिश करते हैं बट उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चे के माता पिता इनको भी मना करते हैं उस बच्चे को उस बच्चे से ज्यादा बातचीत करने से, तो आप एडवाइस करें ऐसे ये पूछते हैं।
बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको भी दादा दादी से प्यार होता है और दादा दादी को भी, क्योंकि वो व्याज हो गया, बेटा एक मुड़ी होती है लेकिन वो व्याज होता है, तो दादा दादी को व्याज प्यारा होता है, तो इससे मन उनका जाता है, परंतु बच्चों को वो करने नहीं देते हैं क्योंकि एक जनरेशन गैप के आधार से वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये इनको अभी क्या सिखाएंगे क्या करेंगे, और ये लोग पुराने रूढ़िवादी हैं तो इसलिए उनके अंदर भी वही संस्कार डाल देंगे, तो उनके अंदर ऐसा भी होता है क्योंकि अभी समय बदल चुका है, बातें बदल चुकी हैं, तो आजकल नई पीढ़ी है तो नई बातों को नई दिशा को देवे और ये पुराने हैं तो पुरानी दिशा ही बतलाएंगे, तो ऐसा होता है, लेकिन हमारी शुभ भावना है, हमारी शुभ कामना है, तो हम ये देखें कि उनके रीति से हम ऐसा न सोचे कि उनको बात करने नहीं दिया जा रहा है, हमारी शुभ भावना है तो अवश्य ही वो हमें बात करने के लिए देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जब तक हमारी दिल की भावनाओं को वो समझे, जब तक दिल की भावनाओं को उन्होंने समझा नहीं है तब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा, तो हम अपने दिल को दुखी ना करें, धीरे धीरे हमारा मेरा अंदर से प्यार है तो मेरा प्यार उस पोते पोती के प्रति अपने आप पहुंचेगा, और बाकी रही बात करने की, तो जब मेरा अंदर प्यार पहुंचेगा तो बेटे और बहू के लिए भी मैं इतना ही प्यार करूं, कहीं कोई बात हो जाती है इसलिए वो रोक रहे होते हैं तो हम उनके साथ भी इतना ही प्यार से चले, पहले हम सोचते हैं कि बेटा और बहू तो मेरे से छोटे हैं तो उनको मेरा मानना चाहिए, नहीं, अभी हमें उन छोटों का भी मान करके चलना पड़ता है, कहीं हम छोटे थे तो बड़ों का मानते थे, लेकिन समय बदल गया है। तो समय बदलने के साथ मुझे हम शरीर का भी मानना होता है, मेरे से अपने छोटों का भी मानना होता है, और उनसे छोटे हैं तो उनका भी मुझे मानना होता है। तो उनके स्वभाव को समझ करके और हम पोते पोती के साथ अगर व्यवहार करते हैं तो अवश्य वो हमें बात करने देंगे।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। मैं बहुत ही क्विकली दो और प्रश्नों को ले लेना चाहता हूँ। दीप्ति मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और दीप्ति जी प्रश्न पूछते हैं, मेरे पति को बेवजह जॉब से निकाल दिया गया, उनके बॉस ने उनके साथ बहुत बेईमानी की, ऐसा ये कहती हैं, सैलरी कट कर दिया और पैंडेमिक में ऑफिस में काम करने के लिए बुलाया, वो नहीं गए तो उन्हें जॉब से निकाल दिया है, क्या करना चाहिए, ऐसा दीप्ति जी पूछती हैं। उनकी बातों से लगता है कि वो इस बात से काफी नाराज हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो आप इन्हें गाइड करें प्लीज।
भाई ये तो अधिकांश दीप्ति बहन बहुतों से होता है ऐसा, खाली एक आपके साथ नहीं है, बहुतों के साथ होता है। लेकिन हमारी सच्चाई हमारे साथ है, हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ है, हमारी दृढ़ता हमारे साथ है, तो अवश्य ही हमें जॉब भी अच्छा मिल जाएगा, हम उसमें नाराज ना हो। एक प्रैक्टिकल कहानी, प्रैक्टिकल बात बताती हूँ कि एक व्यक्ति 24 वर्ष एक ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। लंबा समय होता है, 24 वर्ष कोई कम समय नहीं है, लेकिन इतने वर्ष उसके मालिक के साथ जो उसका संबंध था एक पारिवारिक संबंध की तरह हो गया। उनके परिवार के जो भी सदस्य दूर दूर के भी थे, जब मिलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो मैनेजर नहीं है लेकिन उनका एक बेटा है और उनके साथ उसी प्रकार से चल रहा है, हर एक के साथ मिलजुल करके करता था। लेकिन जब पीछे पे ऐसे आते हैं ना तो उनको उनसे ईर्ष्या होने लगी कि मालिक इनको ही चाहता है, मालिक इनको ही चाहता है, हम लोगों की बातों को वो नहीं चाहता है। और चाहता भी था उनको भी बातों को, लेकिन जैसा जो काम करता है वैसे उन्हें चाह भी जाता है, तो इनको ही क्यों चाहता है। तो कोई ना कोई बातों की कमी मालिक को वो बताते रहे बताते रहे बताते रहे। हर रोज जब उस मैनेजर की बात बताई कि यहाँ ये ऐसा कर रहा है यहाँ ऐसा कर रहा है, तो रोज रोज सुनते सुनते मालिक के मन के अंदर भी आया कि सचमुच मैनेजर ऐसा कर रहा है। अचानक जब दूसरे दिन वो काम पर गया तो उसे लेटर दे दिया गया कि आज से आपको यहाँ से सर्विस से निकाला जा रहा है। और सोचो कल शाम तक भी जिसके बुद्धि के अंदर कुछ नहीं था, सुबह जाने के साथ अगर उसे लेटर मिल जाए तो उसके मन के अंदर क्या बीतेगा। वो उसी समय ऑफिस से निकला लेकिन शाम को ही अपने घर गया। कैसे अपने घर में वो बताए कि मेरे साथ क्या बीता है। इसलिए वो रोज सुबह सर्विस के टाइम पर तैयार होता था, घर से निकलता था, शाम को छूटने के टाइम पर ही घर में आता था। घर में थोड़े दिन तक उसने कुछ बताया नहीं कि मेरे साथ क्या बीता है, लेकिन उसके अंदर इतना आत्मविश्वास था, उसकी दृढ़ता इतनी थी कि मैंने मालिक के साथ जो कुछ किया है वो सच्चाई के साथ किया है। कहते हैं ना कि कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो वो बलवान है मालिक, हम निर्बल हैं, परंतु दिया और तूफान है, वो तूफान है, मैं एक दिया हूँ, मैं बाती हूँ, परंतु कितना भी तूफान आने दो और मेरी सच्चाई की लौ अगर जल रही है तो सच्चाई की लौ को कभी बुझ नहीं सकती है। तो यहाँ पर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें अचानक से निकाल दिया गया, एक दिन नहीं गए और दूसरे दिन लेटर दे दिया गया, आप ऐसा ना समझो, हमारे दिल की सच्चाई है तो वहां नहीं तो कहीं पर भी उसी पोस्ट पर आपको जॉब जरूर मिल जाएगा। आप अपने दिल की आत्मविश्वास को बना करके रखें, दृढ़ता को बना के रखें। आत्मविश्वास सफलता की चाबी है, दृढ़ता हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। इस बात को आप मन और बुद्धि में रखें, अवश्य हमारी भी शुभ भावना है कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी उन ब्लेसिंग्स के लिए। मैं समझता हूँ ये ऐसे समय पर जो पैंडेमिक अभी चल रहा है, ऐसे समय पर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं और बहुत सारे दोस्तों को थोड़ा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखने की जरूरत है। एडवर्स सिचुएशंस में भी हम मुस्कुराते हुए इन चीजों को हैंडल कर सकें, देख सकें, ये मार्गदर्शन आवश्यक था। आज के लिए मैं आखिरी प्रश्न ले लेता हूँ, हालांकि हम समय की सीमा से थोड़ा आगे आ चुके हैं। शेफाली जी हमारे साथ हैं। शेफाली जी प्रश्न पूछती हैं, हाउ टू फॉरगिव समवन एंड रिलीज द हर्ट और चीट। अगर किसी ने हमें हर्ट किया है या फिर हमारे साथ धोखा किया है, तो ऐसे समय में हम उस धोखे को, उस हर्ट को हम कैसे छोड़ दें और कैसे हम सामने वाले को फॉरगिव करें, इसके लिए प्लीज गाइड करें, ऐसा शेफाली पूछती हैं।
शेफाली बहन, मैंने पहले भी बताया था कि क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम, इस स्लोगन को याद रखें। अगर ये स्लोगन मुझे याद है, मैं क्षमा कर देती हूँ। मन से करें, खाली बाहर से नहीं, मन से करेंगे तो मुझे हर्ट नहीं होगा। कहाँ न कहाँ मेरी भूल जरूर कहीं पर होगी, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है और मुझे हर्ट हो रहा है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं उनको क्षमा मांग लूं। और दूसरी बात कि मैं सकारात्मक सोचूं, मेरा मन के अंदर पूरा सकारात्मकता भर गई हो उस व्यक्ति के प्रति, यानी उस आत्मा के प्रति। मेरे मन के अंदर नेगेटिव भाव जरा भी ना हो कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, जैसे देखो क्रिकेट खेलते हैं तो खेलने में हम बैट मार रहे हैं, लेकिन सामने वाला बॉल तो फेंकेगा ही ना, दोनों तरह से क्रियाएं होंगी ना। अगर सामने वाला बॉल फेंके ही नहीं तो मैं बैट किसको मारूंगी। इसी प्रकार से वो अगर मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो हम किसके साथ करेंगे, हम कहाँ पुरुषार्थ करेंगे, हम अपने अंदर गुणों की धारणाओं को कहाँ करेंगे। बच्चा पढ़ता है तो परीक्षा होना स्वाभाविक है, हम भी जीवन के अंदर चल रहे हैं तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। इसलिए किसी भी संघर्ष के कारण हम अपने अंदर दिल की भावनाओं को निराशा में न बदले, दुख में न बदले। आया है चला जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि हमेशा अमावस्या नहीं रहती है, पूनम भी आती है। तो आपके जीवन के अंदर भी अवश्य एक दिन पूनम आएगी, जो आपके दिल को दुख पहुंचा है वहां सुख भी अवश्य आएगा, ऐसी भावनाओं के साथ।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। शेफाली जी, मैं समझता हूँ, इस बात को समझती हैं कि जैसे आपने कहा कि क्षमा वीरस्य भूषणम, कि हमेशा हम क्षमा करने वाले हैं, हम करेजियस हैं, तो ये बात हमें याद रखनी है। इसलिए नहीं कि सामने वाले को आवश्यकता है, बट मुझे करेजियस बनना पड़ेगा कि मैं वो क्षमा दे सकूं। मुझे ये बात याद आती है, महात्मा गांधी ने भी ये बात कही है कि सिर्फ जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो हिम्मत वाला है, वही व्यक्ति सामने वाले किसी को माफी दे सकता है। वरना अगर आप बदला लेने की सोचते हैं तो आप सही में शक्तिशाली नहीं है, आप कमजोर हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने सुनाई, मैं समझता हूँ शेफाली जी इस बात को समझेंगी और फॉरगिव करने से हम बड़े हो जाते हैं।
भाई, हमारे परमात्मा भी तो हमें यही शिक्षा देते हैं कि बदला नहीं लेना है लेकिन बदल कर दिखाना है।
जी,
तो हम बदल जाएंगे तो वो बदल जाएंगे।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। मैं समझता हूँ हमारे सभी दोस्त आज के इस कार्यक्रम से बहुत ही बेहद खुश हैं। कुछ दोस्तों ने फीडबैक लिखा है कि कार्यक्रम और लंबा होना चाहिए, बट दोस्तों हम हर दिन एक घंटे का ही प्रोग्राम लेके आते हैं और कोशिश करते हैं एक घंटे में बातचीत को हम पूरा करें। आज सभी लोगों ने गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं, अपने सभी दोस्तों को भी हम दोबारा शुभकामनाएं देते हैं कि आज का दिन और आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो और हम सभी खुश रहें, हम सभी शक्तिशाली बने, सारे ऑब्स्टिकल्स को हम पार करने वाले बने, ऐसे ये गुड विशेस है। आज आप सभी दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, उसके लिए आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। और आप सभी की तरफ से आज के हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन कुंती दीदी जी जुड़े, मुंबई से खास हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो मैं दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमारे सभी श्रोताओं का, प्रश्न पूछने वाले भाई बहनों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी ऐसे प्रश्न पूछ करके हमें भी चिंतन करने के लिए एक चिंतन की धारा, वो चिंतन की धारा दी है, हमें भी आगे बढ़ाने के लिए ये निमित्त बने हैं। इसलिए उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं और फिर से गणेश चतुर्थी की हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी अपने जीवन के अंदर आत्मविश्वासी बने, अपने अंदर सच्चाई को धारण करते हुए अपनी सफलताओं को प्राप्त करें।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दोस्तों कल कार्यक्रम इंग्लिश में होगा, कल इंग्लिश में भी द चेन सीरीज का एपिसोड संडे होगा और ब्रह्मा कुमारी इसके विदेश की सेवा केंद्रों से वरिष्ठ राजयोग के भाई, राजयोग शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे साथ जुड़ेंगे, तो कल कार्यक्रम में इंग्लिश में आप सवाल जवाब कर पाएंगे, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अब कार्यक्रम के अंत में हर मास्टर ऑफ मेडिटेशन के साथ हम कुछ मिनट मेडिटेशन करते हैं। मैं कुंती दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीदी जी अगले 3-4 मिनट के लिए आप हम सबको मेडिटेशन एक्सपीरियंस करवाएं।
जी है, जी है। ओम शांति। मन के अंदर एक सुंदर विचार को लाएं। आज आप अपने शरीर को ही मंदिर बनाएं। ये शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में रहने वाली मैं आत्मा एक चैतन्य मूर्ति हूं। जैसे मूर्ति सुशोभित अलंकारित सुसज्जित होती है, वैसे मैं आत्मा भी सद्गुणों से, ज्ञान से, आनंद से, सुख से, शांति से, पवित्रता से सुसज्जित हूं। मैं आत्मा अपने आप पर विश्वास करती हूं। मैं दृढ़ता से संपन्न हूं। मेरे मन के अंदर विचार सुबह से लेकर के रात तक श्रेष्ठ सकारात्मक अशुद्ध विचार ही चलते हैं। जहां श्रेष्ठ और शुद्ध विचार है वहां सफलता निश्चित है। ये गुण, ये अलंकार कोई बाहर नहीं है। मैं उस भीतर की शक्ति को, उस ऊर्जा को पहचानूं, उस प्रकाश पुंज को पहचानूं जो इन गुणों से निहित है, और उन गुणों को जानते हुए, उन गुणों को आचरण में लाते हुए अपने जीवन को मैं श्रेष्ठ बनाऊं। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाने में परमात्मा के साथ का, परमात्मा की शक्ति का, परमात्मा के साथ संबंध का मैं अवश्य ध्यान रखूं। परमात्मा मुझ आत्मा को वह शक्ति दे रहा है। मैं आत्मा उस शक्ति को रिसीव कर रही हूं। मेरे अंदर वो शक्ति आ रही है। मैं दिन भर भी समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा समय परमात्मा के सान्निध्य में स्वयं को विराजमान करूं और परमात्मा के सान्निध्य में विराजमान आत्मा अपने लाइफ में शांति की अनुभूति करती है। मेरा मन शांत और शीतल होता जा रहा है। अभी भी आप संकल्प करें बिल्कुल शांत, तो आपके चारों ओर शांति का वातावरण, शांति का वायुमंडल बनता जा रहा है। ये शांति मेरे मन और तन को भी शांत बना रही है। एक शीतल छाया का कार्य कर रही है। ऐसे न सिर्फ अभी मैं इस विचारों को करूं, लेकिन दिन भर संभव हो, जब जब हम पानी पिए या कोई भी कार्य करें, भोजन करें, ये जरूर विचार करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप, जिससे भी मन शांति का अनुभव करेगा। ओम शांति, ओम शांति।